ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में आज संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान हमारी वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवंत और निरंतर प्रवाहमान धारा है।
हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है।
श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। पीएम आवास योजना से 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले हैं। संविधान को अंगीकार किए जाने की आज 75वीं वर्षगांठ है। सरकार ने इस अवसर पर आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या बलिदान प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने आज जम्मू में विधानसभा परिसर के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा ये दिन हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक परामर्श अभ्यास के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। इस संशोधन विधेयक के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों और संबंधित संशोधनों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। निर्वाचन आयोग ने आज राज्यसभा की 6 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। 3 सीट आंध्र प्रदेश में, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में एक एक सीट है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 3 दिसंबर को जारी की जाएगी। 10 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने हमले में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की आज जांच शुरू की। गृह मंत्रालय द्वारा अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मामले सौंपने का फैसला किए जाने के बाद एनआईए ने इन मामलों को फिर से दर्ज किया है। 13 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामले फिर दर्ज किए गए हैं। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आज से मस्कट में शुरू हो गई। टूर्नामेंट में 10 टीम हिस्सा ले रही हैं। भारत, कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड के साथ पूल ए में है। पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान और चीन की टीम है। भारत कल शाम थाईलैंड के साथ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।